السلام عليكم. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. چلیے شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف میں ہم سورۃ الکہف کا چھٹا حصہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ آ رہا ہے. اس قصے میں ہم نے یہاں تک بات دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر تک پہنچایا، اور اس کے بعد ان میں جو ڈائیلاگ شروع ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ سے وہ علم سیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو اپنے خزانوں سے دیا ہے، جس پر حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جن باتوں کا میں آپ کو علم دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور اس کے بعد آیت نمبر 71 سے یہ کہانی آگے شروع ہو رہی ہے. فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها. تو اب کیا ہوا، یہ دونوں چلے یہاں تک کہ یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اب آپ نوٹس کریں گے یہاں سے آگے جو کہانی چلے گی، اس کہانی میں وہ جو تیسری پرسنالٹی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے علاوہ، ان کو اب مینشن نہیں کیا جائے گا. وہ تیسری پرسنالٹی کون تھی؟ حضرت یوشع بن نون. ان کے لیے ان کو مینشن نہیں کیا گیا. اور ہم نے کہاں اپنی کلاس کل جو ختم کی تھی، وہ اسی بات پہ ہم نے کی تھی کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فلا تسألنی، اب آپ مجھ سے زیادہ سوال نہیں پوچھیں گے. اور ہم انہیں سوالوں کے اوپر اور اپنے سوالوں کو فلٹر کرنے کے اوپر بات کر رہے تھے. اب اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوشع بن نون کو مینشن نہیں کیا، تو آپ کو اور مجھے کتنی کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں گئے؟ رادھے راستے سے واپس چلے گئے کیا؟ کیا ان کو وہیں پانی پہ چھوڑ دیا؟ کیا ان کو اسی مچھلی کے پاس چھوڑ دیا کہ اس مچھلی کو سنبھال کے رکھنا؟ آپ کو اور مجھے اس ویلیو، اس چیز کو ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں جس کو قرآن نے ویلیو نہیں کیا. مفسرین دونوں باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں پاسبلٹیز ہیں، کہ یہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا ہو انہوں نے سفر کو، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ واپس چلے گئے ہوں. واللہ عالم، جس چیز میں میرے اور آپ کا کوئی بہت زیادہ ہاتھ نہیں، اس کی کیوریوسٹی کے اندر مجھے اور آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگین یہاں پر وہی چیز ہمیں بتا دی گئی اس طرح سے کہ اب آگے آپ کو حضرت یوشع کا جو قصہ اور مینشن ہے وہ نہیں ملے گا. اور ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قرآن اصل میں ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. جو بک آف ہسٹری ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو الیبوریٹ کرتی ہے. قرآن میں ہسٹری ضرور ہے، لیکن قرآن میں اتنی ہی ہسٹری ہے جس ہسٹری کا تعلق میرے اور آپ کے عمل سے ہے، جس سے آپ اور میں اپنے فائدے کی کوئی چیز لے سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن ہسٹری کی کتاب ہے تو بالکل غلط کہتا ہے. قرآن از دا بک آف گائیڈنس. ہسٹری اس میں اتنی آتی ہے جس کے آپ کی اور میرے عمل سے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں نکل سکتی ہیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی کو کنٹینیو کیا، اور یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو سفر تھا، جرنی تھا، وہ شروع ہو گیا. اور اس ڈیل پر یہ جرنی شروع ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سوال نہیں کریں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر، فن طلقا، میں نے یہ کیوں بولا وقت ضائع کیے بغیر؟ فا کی وجہ سے. فا یہ بتا رہا ہے کہ بس انہوں نے اپنا فوراً سفر جو تھا وہ شروع کر دیا، اس لیے کہ فا لت تاکید آیا ہے. ان طلقا جو لفظ آیا ہے، اس کو عربی زبان میں قید کا اپوزٹ لیا جاتا ہے. قید میں جب آپ کسی جیل میں یا ٹارچر سیل میں یا کسی سیل میں یا پریزن میں ہوتے ہیں، تو آپ ایک ہی جگہ کے اندر جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان طلقا آتا ہے کنٹینیو کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. تو قید کا اپوزٹ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان طلقا، وہ آگے بڑھے. اور آگے بڑھے اس کی ڈیٹیل اب جو آئے گی وہ آپ کو بس یہاں تو اتنی ملتی ہے کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. احادیث اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل بتاتی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے
अपने इस सफ़र को कंटिन्यू किया तो क्योंकि ये शोर पे सारा मामला चल रहा था साहिल के ऊपर, तो समुंदर के साथ साथ ही इन्होंने बीच के ऊपर चलना शुरू कर दिया। इतने में कुछ दूर आगे गए थे तो इनको करीब ही एक कश्ती, एक बोट नज़र आई जिसमें कुछ लोग सवार थे। तो इन्होंने कश्ती वालों को हाथ से जैसे वेव नहीं करते हैं तो ऐसे वेव किया, इशारे से पूछा कि क्या हम आ सकते हैं। तो बास स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि जो उस कश्ती में चंद लोग सवार थे उनमें से कुछ हज़रत खदर को जानते थे कि ये इस इलाके के नोबल राइचियस इंसान है। तो उनको देखकर उन्होंने, हज़रत खदर को देखकर उन्होंने कहा कि हम आपको अपने साथ बिठा लेंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन ये कि ये जो कश्ती वाले थे, जो कश्ती में लोग जा रहे थे, फ़िशरमैन जो थे, मछेरे जो थे, ये अच्छे नेक लोग थे और जनरोसिटी करने वाले लोग थे, निसदका करने वाले लोग थे। तो इन्होंने मेहमान नवाजी की, इनको नज़र आया कि दो लोग जा रहे हैं यानी मुसाफिर हैं, और आप देखती हैं कि आपको अक्रॉस एथनिसिटीज़ जो है वो मुसाफिर का और मेहमान का इकराम मिलता है तमाम ट्रेडिशंस के अंदर। तो बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि जानते नहीं थे हज़रत खदर को, लेकिन ये कि इनको नज़र आए दो मुसाफिर, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम इनको जो हैं अपनी कश्ती में सवार कर लेते हैं। तो उन्होंने इनको कश्ती में सवार किया। फ़ाहमलूहुम मिन गैरी नवाल, हदीस में आता है बग़ैर किसी इसके टिकट के या पैसे के या माल के इवस, इन एक्सचेंज ऑफ एनी वेल्थ, इन्होंने इनको अपनी कश्ती में बिठा लिया कि आप जहाँ जाना चाहते हैं हम आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ देंगे, यानी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। और बाज़ लोग जो स्कॉलर्स कहते हैं कि हज़रत खदर को ये जानते थे, उन्होंने कहा कि इल्म वाले एक साहब की वजह से इन्होंने हज़रत मूसा को भी अकोमोडेट कर लिया और उनसे जो है वो पैसे लेने पसंद नहीं किए। फिर अहदीस में एक वाक्या और आता है कि जब ये दोनों कश्ती में सवार थे और बाकी मशेरे भी बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि हज़रत मूसा और हज़रत खदर ने एक परिंदे को देखा। अब आप इमेजिन करें कि कश्ती चल रही है पानी में और लोग बैठे हुए हैं, और कश्ती बड़ी कश्ती आती है, इसके जो अल्फाज इसके लिए आए हैं सफ़ीना, सफ़ीना मतलब बड़ी कश्ती जिसमें एक दो डेक होते हैं कम से कम, एक ऊपर का पोर्शन होता है और एक नीचे का पोर्शन होता है। तो ये लोग बैठे हुए थे और इन्होंने एक परिंदे को देखा, दोनों ने, हज़रत खदर ने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और इन्होंने देखा कि जो परिंदा है उसने दो तीन मरतबा समंदर के पानी में अपनी चोंच को, अपनी बीक को जो है वो डिप किया। हज़रत खदर ने इस परिंदे को देख कर बोला, मा नक़सा मिन इल्मिन व इल्मुका फ़ी इल्मिल्लाह, मेरे और तुम्हारे इल्म के जितने भी अल्लाह ताला ने डायमेंशन दिए हैं वो दोनों मिलकर भी अल्लाह के इल्म में कोई कमी नहीं करते। यानी बताना ये चाहा उन्होंने उस परिंदे की मिसाल देकर, और आगे फरमाया कि जितना पानी इस परिंदे की चोंच में आया है जो इसने एक दो मरतबा समुंदर में डिप किया है, बस मेरा और आपका इल्म अल्लाह के इल्म के कंपैरिजन में इतना सा ही है। यानी जो हमारे पास इल्म है वो बहुत मामूली सा है। ये एक आपको उस्ताद की ह्यूमिलिटी नज़र आ रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे सीखने आए थे और इनसे कहा था कि जो आपके पास इल्म है, मिम्मा उल्लिमता, उसमें से आप मुझे सिखाइए। और उस्ताद भी अपनी जगह हम्बल थे और शागिर्द भी अपनी जगह हम्बल था, इसलिए कि शागिर्द जो था वो ऑलरेडी पैगंबर की पोजीशन पर था और शागिर्द को ऑलरेडी अल्लाह ताला ने गैब का इल्म दिया हुआ था। तो जब उस्ताद हम्बल होता है तो शागिर्द भी हम्बल होता है और वाइस वर्सा। और उस्ताद ने भी इल्म देने से पहले ये बात मेंशन कर दी एक पैराबल के ज़रिए परिंदे के जो सामने नज़र आया था, कि देखें ये असल में जितना भी इल्म मेरे पास भी है और जो भी मैं आपको मामूली सा इल्म सिखाऊंगा, ये अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कोई वक़्त नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो इस तरह से इस चीज़ को मेंशन किया गया अहादीस के अंदर। अहादीस में ये बात भी आती है कि जो कश्ती थी ये दो लोगों की थी, दो तीन लोगों की मिलकर ओनरशिप थी इसके ऊपर, और ये दो तीन लोग जो थे ये मछेरे थे, फ़िशरमैन थे, और ये मिस्कीन थे। आपको आगे जो है इसकी एलैबोरेशन जो है वो मिल जाएगी। और ये अपना गुज़र बसर जो था इसी कश्ती के ऊपर जो है वो फ़िशिंग करके किया करते थे। अब हुआ क्या कि आपको जो आयत में अल्फाज मिलते हैं वो ये मिलते हैं, फ़नतालका, वो दोनों चले, हत्ता इदा राकिबा फिस सफ़ीनति, यानी कि बस इतना ये यहाँ तक चले कि वो एक कश्ती में सवार हो गए, खराकहा, और उसने उस कश्ती को ख़राब कर दिया, ऐबदार कर दिया। खरकहा एक लफ्ज़ आया और उसकी फिर डिटेल आपको अहादीस में मिल जाती है कि हज़रत खदर ने जो था वो नीचे के डेक में गए और उन्होंने, क्योंकि कश्ती वुड की होती है, उन्होंने वुड प्लैंक्स जो होते हैं उनमें से वुड प्लैंक्स निकालना शुरू कर दिया। या बाज़ रिवायात में आता है कि उनके पास एक एक्स था और उन्होंने अपने उस कुल्हाड़े से, उस एक्स से कश्ती के अंदर जो था वो सुराख कर दिया। दोनों चीज़ें आपको अहादीस में मिल जाती हैं। अब बाकी जो फ़िशरमैन थे वो ऊपर थे इसलिए कि वो अपना नेट फेंक रहे थे, वो अपनी मछलियाँ पकड़ रहे थे, ये नीचे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो बहुत ही अजीब लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा आपने इसको ख़राब कर दिया, काला अख रक तहा आपने इसको ऐबदार कर दिया, आपने इसको ख़राब कर दिया, लितुगरिका अहला क्या आप ये चाहते हैं कि इसके जो कश्ती वाले हैं आप उनको डबो दें, लकद जी तशई अन इमरा यकीनन ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। अक्सर लोग इसको रवानी में अमरा पढ़ जाते हैं, अमरा नहीं है, कुरान में अमरन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, यह है इमरा हमजा की जेर के साथ, लकद जी तशई अन इमरा यकीनन ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। यानी क्या बुरा काम किया था, हज़रत मूसा के बकौल हज़रत खदर ने उन्होंने कश्ती में होल कर दिया था, कश्ती में सुराख कर दिया था, और जाहिर बात है कश्ती में सुराख करने का मतलब क्या है कि अब पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, और कश्ती उस वक्त तक पानी में फ्लोट करती रहती है, समुंदर में फ्लोट करती रहती है जब तक कि समुंदर का पानी उसके अंदर नहीं आता। एक मरतबा समुंदर का पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा तो वो उस कश्ती को डुबो देगा। टाइटैनिक के साथ यही हुआ था, टाइटैनिक जो था वो एक आइसबर्ग से टकराया था और उसके बाद उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया था और उसके बाद वो दो हिस्सों में टूट गया था और वो डूब गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही डर हुआ कि भाई कश्ती में सुराख का मतलब है कि पानी आएगा, और पानी का मतलब ये कि अल्टीमेटली कश्ती को और जो कश्ती में लोग हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। आप देखें जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल किए, लितुगरिका अहलहा ताकि आप गर्क कर दें या आप हलाक कर दें या आप नुकसान पहुंचाएं उसको जो इस कश्ती के रहने वाले, यानी उनका प्रोमिनेंट फीचर जो था गुफ्तगू का वो लोग थे जिन्होंने इनके साथ जनरोसिटी का मामला किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने उसको गर्क कर दिया ताकि हमें डिबो दें, हालांकि ख़ुद भी तो उसके अंदर ही थे, उसी कश्ती में थे, हज़रत खदर भी उसी कश्ती में थे, तो हम का प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल किया कि आप क्या ये चाहते हैं कि हम सब डूब जाएँ। हम अपने आप को एसोसिएट नहीं किया, ये अम्बिया की सुन्नत एक नज़र आ रही है कि अम्बिया लोगों के लिए बहुत वरीड होते हैं, अम्बिया लोगों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि नेक लोग हों। तो मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िक्र भी यही थी कि जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है हम उनके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए भी सोचने की बहुत बात है कि जो हमारे साथ अच्छा करते हैं हम उनके साथ कभी भी बुरा करने का ना सोचें। तो उन्होंने कहा लकद जी तशई अन इमरा आपने तो बहुत ही बुरा काम किया। अगर अमरन आता है एक हरकत बदलने से सिर्फ, अगर यह हमज़ा की ज़बर के साथ होता तो इसका मतलब होता है फैसला या हुक्म देना, हुक्म करना, लेकिन ये इमरन आ रहा है, इमरन का मतलब होता है कोई बहुत नागवार चीज़, अनप्लेजेंट चीज़, नापसंदीदा चीज़, बुरा काम। जो हज़रत कतादा हैं जो ताबई हैं और बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असल में कहने का मतलब था कि आपने बहुत ही इमरन अजबन, आपने बड़ा ही अजीब बुरा काम किया। यानी एक उसके अंदर जो थी वो ताकीद थी कि कैसा स्ट्रेंज काम आपने किया कि जिस कश्ती वाले ने आपको जगह दी आपने उसी के अंदर सुराख कर दिया। जैसे हम नहीं कहते कि जिस थाली में खाते हो उसी में सुराख करते हो, या जिसका नमक खाते हो उसी के साथ जो है वो गद्दारी करते हो, तो एक इसी तरह का अंदाज़ जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम का था। उनको ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा जो कि नामुनासिब था। मगर आपको कंडीशन याद होगी कि हज़रत खदर किस कंडीशन पर अपने साथ इस सफ़र में कंटिन्यू करने को लेके गए थे, आप सवाल नहीं करेंगे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आपने तो बहुत ही अजीब काम किया, आयत नंबर 72, तो काला, अब ये काला कौन है, किसने कहा, हज़रत खदर ने कहा अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मअय सब्र, मैंने नहीं कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। आयत 73, कौला ला तुआखिज़नी, ये कौला कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम। तो आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं ये खुद आप सूरह कहफ में तो इस चीज़ को समझ जाएंगी, और कोशिश करें इंशाल्लाह कि बाकी कुरान में भी आपको यह समझ आए, उसके लिए इल्म के सामने आकर बैठना जो है वो आपको फ़ायदा देगा। क़ाला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखें मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। ये जो अंदाज़ है ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, अपनी गलती की जस्टिफिकेशन देने से पहले उन्होंने सॉरी सॉरी आई एम सॉरी ये अंदाज़ है, मुझसे गलती हो गई। तो अच्छा अंदाज़ क्या होता है कि जब गलती हो तो जस्टिफिकेशन बाद में, सॉरी पहले, ताकि सामने वाले का दिल नरम हो जाए कि एक इंसान ने अपनी गलती को एडमिट कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भूल पर मेरी पकड़ मत कीजिए, वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा, और मेरे काम में यानी जो मेरा सीखने का काम है इसमें प्लीज़ मुश्किल नहीं डालिए, यानी आप मुझे अपने साथ जो है वो कंटिन्यू कीजिए। आप देखें यहाँ पर एक भूल का जिक्र आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के, बीमा नसीतु, इस वजह से कि मैं भूल गया, यानी मैं भूल गया कि मैंने सवाल नहीं करना था। एक भूल आपको यहाँ नज़र आ रही है, एक भूल इस कहानी में पीछे भी आ चुकी है, वो किसकी भूल थी, वो यूशा बिन नून की भूल थी, जिन्होंने कहा था कि मुझे शैतान ने भुला दिया। और जब यूशा बिन नून ने सॉरी बोला था, मुझे शैतान ने भुला दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई एग्रेशन का या एग्रेसिवनेस का या गुस्से का इजहार किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था। यहाँ पर आप देखेंगी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सॉरी, मैंने जो है वो गलती से, भूल से ये काम कर दिया, तो ज़रा हज़रत खदर का मामला आपको थोड़ा सा अबिट एग्रेसिव नज़र आएगा, इसलिए वो दो के बाद ही उनका थ्रेशोल्ड ख़त्म हो रहा था। तो ये क्यों नज़र आएगा? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को रेप्रिमांड किया गया था भूलने पर, क्योंकि यूशा बिन नून का और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाम का बहुत फ़र्क था। आप सुनती हैं ना, जिसके दर्जे हैं सिवा उसके सिवा मुश्किल है। जैसे हमने कल बात की थी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के एक जुमला बोलने पर कि मैं इन सब से जो सामने बैठे हैं इनमें इल्म में ज़्यादा हूँ, इस पर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई थी, जैसे रसूलुल्लाह की पकड़ आ गई थी इस बात पर कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पर नागवारी क्यों आई अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को देखकर, इसी तरह से ये मामला भी आपको नज़र आ रहा है कि वो मुकाम जो हज़रत यूशा का था वो हज़रत मूसा का नहीं था। जो गलती और जो निगलेक्ट हज़रत यूशा की बर्दाश्त हो सकती थी वो हज़रत मूसा से नहीं हो सकती थी। और आपने हदीस पढ़ी होगी जो हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से आती है, वो कहती हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है अन नुनज़्ज़िलन्नासा मनाज़िलहुम, लोगों को उनकी अक्ल और उनके रुतबों के इतबार से ट्रीट किया जाए। ये अल्लाह के रसूल ने बात सिखाई है। आप हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, आप सबको एक ही तरह डील नहीं कर सकते कि आप जिस तरह से अपनी बहन को डील करती हैं वैसे ही जो हैं वो आप अपनी नंद को डील करना शुरू कर दें, या जैसे आप अपनी माँ के साथ मामला करती हैं वैसे ही आप अपनी सास के साथ मामला करना शुरू कर दें, या जैसे आप अपने 8-9 साल के बच्चे को डील करती हैं वैसे ही आप अपने 19-20 साल के बच्चे को डील करना शुरू कर दें। इसमें हमारे लिए बहुत सबक है इस बात के अंदर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह सिखा के गए हैं कि लोगों को उनकी अक्ल और मैच्योरिटी के मुताबिक डील किया जाए, लोगों के बैकग्राउंड के मुताबिक उनको डील किया जाए, और लोगों के एक्सक्यूजेस उनके बैकग्राउंड को देखकर हैंडल किया करें। इससे बाज़ औक़ात इंसान को माफ़ करना आ जाता है, ख़ास तौर पे जब आप लोगों के शूज़ में खड़े होकर, उनके मुकाम पर खड़े होकर सोचते हैं कि भाई इनको बात नहीं समझ आती है। बाज़ औक़ात हम अपने डोमेस्टिक स्टाफ के लिए बहुत घबराते हैं, हम कहते हैं हम एक ही बात कितनी दफ़ा बताते हैं, इनको समझ नहीं आती है, बजाय इसके कि उनकी इस कमज़ोरी को हम बार बार दूसरों के सामने हाईलाइट करके गीबत का शिकार हों, बेहतर है कि आप उनके शूज़ में खड़े होकर देखें और आप ये बात पहचान लें कि अल्लाह ताला ने उनकी अक्ल को इतना महदूद रखा है, उनका जितना कम एक्सपोजर है उतनी उनको कम बात समझ आती है। इसी तरह से एक चीज़ इसके अंदर और बहुत अहम है, और वो स्कॉलर्स कहते हैं वो अहम बात यह है कि हर वक्त इंसान नरमी 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 का मामला जो करके जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ख़ासतौर पर माँ होने की हैसियत से आपके और मेरे लिए इसमें बड़ा सबक है। हम एक्सट्रीम्स पर चलने वाले लोग हैं ना, जब हम डांटते हैं तो हम इतना डांटते हैं कि बस हम ज़िंदगी भर डांटते रहते हैं, और जब हम नरमी करते हैं तो हम इतनी नरमी करते हैं कि फिर हम ज़िंदगी भर तक नरमी करते रहते हैं। मोमिन इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नरमी एंड डिसिप्लिन। आपको माँ बाप बन के इन दो चीज़ों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन रखना होता है। इसलिए आपको कहा कि आपका बच्चा 6-7 साल का है तो नरमी 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 फ़ायदा देगी, लेकिन आप में से जिनके बच्चे 5-6-7 या 7 साल के होंगे, आई एम श्योर आप माएँ खुद इस बात को जस्टिफाई करेंगी कि मुमकिन नहीं है कि आप हर वक्त नरमी नरमी से मामला करें। आपको अपने बच्चे को अगर डिसिप्लिन सिखाना है तो आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। इसी तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, 5 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, आप उसको नमाज़ पढ़ना सिखा रही हैं, अभी उसकी प्यूबर्टी शुरू नहीं हुई है, कभी वो ऑन एंड ऑफ छोड़ देता है तो ठीक है, आप नरमी का मामला करती हैं, आप समझाती हैं, आप बताती हैं। आपका 30 साल का बच्चा है, आपका 20 साल का बच्चा है, आपका 25 साल का बच्चा है, और वो मुस्तकिल नमाज में निगलेक्ट कर रहा है, अब भी आप नरमी करती रहेंगी? अब आपको सख्ती करनी है, और सख्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप डंडा पकड़ के उसके पीछे पड़ जाएंगे, यानी अब आपको उसकी काउंसलिंग ज़्यादा करनी है, आपको कोशिश ज़्यादा करनी है, आपको उसके लिए दुआ ज़्यादा करनी है, आपको उससे नमाज के बारे में बात ज़्यादा करनी है, आपको उसको किसी कुरान की महफिल में बिठाने की कोशिश ज़्यादा करनी है। इसलिए कि वो 25 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता है, कैसे हो सकता है कि माँ होने के मुकाम के ऊपर मैं हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ नरमी का मामला जो है वो सोचती रहूँ? तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत से इसके अपने अंदर जो है वो मैसेज रखती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये अंदाज़ अपनाया कि हज़रत खदर से कहा कि देखें मुझे अपना प्रॉमिस याद था मगर मैं भूल गया और मुझसे गलती हो गई, तो आप मेरा जो है वो मुआखज़ा ना कीजिए। हदीस में आता है कानतिल उला मिम मूसा निसियान, मूसा अलैहिस्सलाम की पहली गलती वाकई भूल की वजह से थी, निसियान की वजह से थी, यानी मूसा सिंसेरली भूल गए थे। حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو سوری بولے اور یہ کہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا بٹ آئی ایم سوری میں بھول گیا ہوں, تو اس کو معاف کر دیں, پکڑ مت کیجیے. اب وہ قرآن کی آیت یاد رکھیے, آپ اور میں اس کی تصویر نہ بن جائیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب پکڑتے ہو تو بہت ہی جبار بن کے پکڑتے ہو. لوگوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کو معاف کر دیں, اور یہ معاملہ آپ کو اور مجھے اپنے اندر لانا پڑے گا, اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اگر ہم امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے جڑیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہارمنی آئے, گھر کے ماحول میں سکون آئے, گھر گھر لگے, اگر گھر گھر نہیں لگ رہا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. امیجن کریں گھر میں پانچ چھ لوگ رہتے ہیں اور کوئی ایک دو انسان ایسے ہیں جن کا غصہ بہت تیز ہے اور جو ہر وقت جائز ناجائز غصہ کرتے رہتے ہیں, یا غصہ جائز کرتے ہیں لیکن اس کا غصے کا انداز جو ہے وہ باقیوں کو نیکی سے دور کر دیتا ہے. تو اب باقیوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے نا, درگزر کرنے کا معاملہ باقیوں کو بھی کرنا ہے, اس سے کیا ہوگا, گھر میں ہارمنی پیدا ہوگی. تو حضرت ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو سوری بولے تو آپ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی, اور حضرت خضر نے جو ہے ان کو یہ جو موقع تھا یہ دے دیا. قرآن نہیں بتاتا کیسے موقع دیا, قرآن نے صرف آیت نمبر 74 میں کہا فن تلقا, یہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو, یعنی سفر پھر کنٹینیو ہو گیا. دس از انڈیکیشن کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چانس اور دے دیا, اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایکسکیوز جو تھا نسیان کا وہ حضرت خضر نے مان لیا تھا. آیت 74 فن تلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, پھر وہ دونوں چلے, اور جب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے جس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. اب یہاں لفظ آیا ہے غلام, اس سے پہلے آپ نے لڑکے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا یوشا بن نون کے لیے, وہ کیا آیا تھا, فتح آیا تھا. عربی زبان میں جو مختلف ایج بریکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں. آپ کو ایک فتح مل گیا, ایک غلام مل گیا, ایک آگے آپ کو ملے گا اشدہ. اسی واقعے کے اندر تین آپ کو ٹرمز جو ہیں وہ مل رہی ہیں. یہ عربی میں کہتے ہیں زیادہ تر غلام ینگ بچے کے لیے, ینگ پرسن, ینگ پرسن مطلب جو نیئر ٹو فتح ہو. فتح کس ایج پر بتایا تھا میں نے آپ کو, جب آپ لیگل ہو جاتے ہیں, تو یہ اس سے پہلے پہلے جو آپ کی سمجھ لیں کہ 17 سال تک, 15-16 سال تک جو ہے وہ غلام کا ہوتا ہے. اصل میں نیو بورن سے لے کے 7 ایئرس تک طفل ہوتا ہے, تو کے ساتھ قا فا لام طفل, اور اس کے بعد غلام آتا ہے 7 onward till 16 or 15 تک آتا ہے. اس کے بعد فتح آتا ہے تقریباً 16 سے لے کر 30 تک لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہولت کی عمر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر آتا ہے, کہلن, کاف ہا اور لام, کہلن آتی ہے بٹوین 30 and 40. اور یہ جو اشدہ کا لفظ آپ کو آگے ملے گا یہ شروع ہوتا ہے تقریباً 30 سال سے لے کے 40 سال تک کے درمیان, اشدہ کا لفظ جو آتا ہے ابھی آگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد رجل آتا ہے اور پھر شیخ آتا ہے. تو طفل ہے, غلام ہے, فتح ہے, کہلن ہے, رجلن ہے اور شیخن ہے. یہ شیخن بوڑھے انسان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 6 سٹیجز ہیں, طفل, غلام, فتح, کہلن, نہیں اشدہ تو کمبینیشن ہے دو کا, وہ اس میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, رجل اور شیخ, ٹھیک ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ یہ جو یہاں لفظ آیا ہے غلامن, یہ بچہ ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچا تھا. غلامن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جس بچے کو حضرت خضر نے مرڈر کیا تھا یہ بچہ ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچا تھا, اس لیے کہ زیادہ تر غلام کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ عربی زبان میں نابالغ اور جس کے پاس ابھی عقل نہیں آئی ہوتی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی بچے کے بارے میں, فلو انہ ادرک, یعنی ادرک البلوغ, ارحق ہما طغیانا و کفرا, اگر یہ بچہ اپنی پیوبرٹی پر پہنچتا تو یہ اپنے ماں باپ کو اپنی زیادتی اور نافرمانی اور کفر سے اور نقصان پہنچاتا. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں, دو رائے بہرحال موجود ہیں, بعض حضرت ابن عباس کا رائے اپنی جگہ پر الگ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ پیوبرٹی ٹچ کیا ہوا بچہ تھا, اور عبداللہ ابن عباس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا ہائی وے رابر بھی تھا, چوری کرتا تھا اور اپنے علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ چور ہے. बहरहाल एक राय ये, लेकिन ज़्यादातर जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि ये बच्चा जो था इसने अभी प्यूबर्टी हिट नहीं की थी, अभी ये बालिक बच्चा नहीं था। दोनों राय हमें मिल जाती हैं, आपके सामने मैंने दोनों रख दी। और जो आप तफासीर से हट के ज़रा नरेशंस पर जाते हैं, अहादीस पर जाते हैं, तो अहादीस में इस बच्चे को जो कत्ल करने के डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ तो सिर्फ इतना आया ना, इज़ा लकिया, जब वो दोनों मिले गुलामन एक लड़के से, फ़क़ादा लहू, उसने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अहादीस में बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन आता है, आप अगर सही अहादीस पढ़ें तो उसमें इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन आता है कि बाज़ोकात लोग घबराते हैं बताते हुए, कि कहीं लोग घबराए ना जाएं कि अहादीस में बात बताई जा रही है सही अहादीस में, और कैसे कत्ल किया था हज़रत खदर ने। हज़रत खदर ने जो रिवायात में आता है, पता चलता है कि पहले उस बच्चे के सर पर चट्टान, एक छोटा सा पत्थर मारा, उसके बाद जो है वो उसके सर को उड़ा दिया, जो एक्स था उनके पास जिससे उन्होंने कश्ती में सुराख किया था, उसी एक्स से, उसी कुल्हाड़े से उन्होंने गर्दन उड़ा दी उसकी, और फिर उसके बाद उसको उठाकर दूर फेंक दिया। अब सवाल सिर्फ ये है कि जो किसी के जहन में आ सकता है कि ये इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्यों हदीस में आया, और अगर हदीस में आया इसका मतलब है कि ऐसा किया गया, अगर ऐसा किया गया तो क्यों किया गया, एक सवाल आ सकता है किसी के जहन में, और ये सवाल जायज़ है। यकीनन इंसान जब पढ़ रहा होता है, और आप जब मुस्तकिल पढ़ रहे हैं नरमी और दरगुजर, और एक वाकया जो है वो आपके सामने आ रहा है कि एक तो कत्ल खुद इतना एग्रेसिव स्टेप है, और उसके बाद जब आप कुरान से हटकर अहादीस पर जाते हैं तो अहादीस बताती हैं कि बहुत ही और एग्रेसिव तरीके से कत्ल किया गया, तो सवाल उठता है कि क्यों इतने एग्रेसिव तरीके से मारा हज़रत खदर ने। मुफसरीन कहते हैं कि वल्लाहु आलम उसकी क्या रीज़न थी। जो मुफसरीन को समझ आता है वो ये समझ आता है कि शायद मूसा अलैहि सलाम का इम्तिहान टफ किया जा रहा था, सब्र का। आप देखें, कश्ती को ऐबदार करना एक मामूली चीज़ थी एक इंसान को कत्ल करने के मुकाबले में, और कत्ल करने की भी इंटेंसिटी को दिखाया गया, तो मूसा अलैहि सलाम के सब्र को आज़माया जा रहा था, मूसा अलैहि सलाम की स्ट्रेंथ को देखा जा रहा था कि ये कितना ज़्यादा जो हैं इसको बर्दाश्त करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक नबी ने, एक रसूल ने इतने हॉरिफाइंग अंदाज में एक बच्चे को कत्ल होते हुए देखा। बाज़ अहादीस में ये भी आता है कि जब मूसा और खदर इस बच्चे के पास पहुँचे तो ये बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, इससे भी पता चलता है कि ये प्यूबर्टी अभी इस बच्चे को टच नहीं की हुई थी, इसलिए कि अपने दुनिया के कामों में मसरूफ़ नहीं था, खेल कूद में मसरूफ़ था। तो जब मूसा अलैहि सलाम ने इस तरह से हज़रत खदर को, एक मासूम बच्चे को कत्ल करते हुए देखा, तो शदीद अपसेट हो गए। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि उन्होंने गर्दन उड़ाई उस बच्चे की। आपको मालूम है इस्लाम में भी जब क़िसास का जो हुक्म है, गर्दन के बदले जान के बदले जान, तो जो हुक्म दिया गया है वो गर्दन उड़ाई जाती है तलवार के ज़रिए। उसकी हिकमत अगर आप उसको साइंटिफिकली पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दो ईजीएस्ट डेथ होती है जिसमें आपको कम से कम मिनिमम तकलीफ होती है, वो यही होती है जिसमें गर्दन उड़ा दी जाती है। हम कहते हैं ब्रूटल है, हमें देखने में लगता है, अगेन वही बात, जो चीज़ सर की आंखों से नज़र आ रही है हमेशा वो हकीकत नहीं होती है। उसकी साफ मिसाल आपके और मेरे लिए मिराज है। मिराज नज़र आ रहा होता है पानी है, मगर क्या पानी होता है? हमें नज़र आ रहा होता है तकलीफ़ हो रही है, किसी की गर्दन उड़ा दी, लेकिन साइंस इस बात को प्रूफ कर चुकी है कि जब गर्दन उड़ाई जाती है तो उसमें सबसे इजी डेथ है वो, उसके मुकाबले में कि आप किसी को इलेक्ट्रिक शॉक वाली चेयर पर बैठा दें, उसके मुकाबले में कि आप किसी को टॉर्चर करके मारें, उसके मुकाबले में कि आप किसी को पॉइजन दें, उसके मुकाबले में कि आप किसी को जो है किसी पर एसिड डाल दें, और आप गिनते जाएँ और काउंट करते जाएँ। हमारा ईमान होना चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ से दी हुई शरीयत के हुदूद हैं, जो शरीयत के अहकाम हैं, उसमें खैर है। हमें समझ नहीं आता वो अलग बात है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें खैर नज़र नहीं आ रहा तो इसमें खैर है भी नहीं। आज बहसें कितनी हुई और कई अरसे से होती रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साइंस प्रूफ कर चुकी है कि जो ज़बीहा होता है उस ज़बीहा के अंदर जानवर को मिनिमम तकलीफ़ होती है, और जैसे ही उस जानवर के गले पर छुरी चलाई जाती है कुर्बानी के लिए, ज़बीहा के लिए, वो जानवर 3 मिनट के लिए डीप स्लीप में चला जाता है। आप सोचें 3 मिनट के लिए डीप स्लीप में चला जाता है, तो वो तो नींद में ही होता है, उसको नींद में इंतकाल हो जाता है, उसका नींद में ही मर जाता है। तो अब तो साइंस प्रूफ कर रही है, अब तो वो खुद कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो है इसको बोल्ट स्टनिंग मेथड से मारा एक जानवर को, और एक जानवर को उन्होंने जो है वो प्रॉपर इस्लामी ज़बीहा के तौर पर मारा। दोनों की उन्होंने EEG रिकॉर्ड की तो उनको पता चला कि जिस जानवर को मुस्लिम तरीके से ज़बीहा तरीके से जो है वो ज़बह किया गया, स्लॉटर किया गया, उसको उसकी ब्रेन एक्टिविटी जो थी वो ऑलमोस्ट रुक गई थी, इसलिए कि वो सो गया था, तो उसने वो तकलीफ़ का पैटर्न फील ही नहीं किया। अब तो साइंस प्रूफ कर रही है इस चीज़ को। तो बहरहाल इतना ग्राफिक फिगर जो यहाँ अहादीस में रहता है उसकी उलमा जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो एक ही तौजीह बताते हैं. वो कहते हैं वल्लाहु आलम, हो सकता है सिर्फ जो वजह समझ आती है वो यही कि मूसा अलैहि सलाम का टेस्ट जो था उसको सख्त किया जा रहा था. मूसा अलैहि सलाम ने कहा, काला, आपने एक बेकसूर इंसान को बग़ैर किसी के क़िसास के कत्ल कर दिया, आपने एक इनोसेंट को मार दिया और उसने आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था. और ये बात भी ज़कियतन भी आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बता रही है कि वो ज़कियतन एक प्योर सोल था, यानी एक बच्चा था. हमें पता है जब तक इंसान प्यूबर्टी हिट नहीं करता उसके अल्लाह ताला जो गलतियां और गुनाह हैं उनको लिखना नहीं शुरू करता. स्कॉलर्स बताते हैं कि बच्चे अकाउंटेबल नहीं होते अपनी प्यूबर्टी से पहले, लेकिन अल्लाह की शान रहीमी देखिए, जो उसूल है आपको शरिया के अंदर मिलता है वो मिलता है अल इतफालु तकतब हसनात मलतब सैयात, नेकियाँ लिख ली जाती हैं उनकी. मतलब अगर किसी बच्चे की प्यूबर्टी हिट नहीं की है, वो 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का है और वो नेकियां करता है, नेकियां लिख ली जाती हैं, गुनाह नहीं लिखे जाते, गलतियां नहीं लिखी जाती. तो ये अल्लाह की शान है. बिल्कुल जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था इंसान और कुफर से मुसलमान होता था तो आप उसको बताया करते थे. वो कहता था मेरे सारी पिछली ज़िंदगी बिल्कुल इरेज हो गई, ख़त्म हो गई. तो अल्लाह के रसूल कहते थे जो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में अच्छे काम थे अल्लाह उनको नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, और जो तुम्हारे गुनाह थे और जो तुम्हारी बुराइयां थीं उनको अल्लाह इरेज़ कर देगा तुम्हारे नामाए आमाल से. तो बच्चों के साथ भी यही मामला होता है. इसलिए हज़रत मूसा ने इस बात को मेंशन किया कि आपने एक नफ्स को कत्ल किया, ज़कियतन, जो कि बिल्कुल प्योर सोल था, मासूम बच्चा था. फिर मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा, रहा नहीं जा रहा मूसा अलैहि सलाम से, लक़द जिता शैअन नुकरा, आपने तो ये बहुत ही ईवल काम किया. नुकरा मुनकर से है. आप सोचें टीचर को कह रहे हैं आपने बहुत ही ईवल काम किया. आप खुद सोचें ना, मैंने इसलिए ईवल लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने ये नहीं कहा कि आपने तो बहुत ही मुनकर बात की, आपने बहुत ही बुरी बात की. उससे शायद हमें उसकी इस लफ्ज़ की इंटेंसिटी नहीं पता चलेगी. कह रहे हैं लक़द जिता शैअन नुकरा, आपने तो बड़े ईवल काम किया है. अब वो जैसे जैसे अमल की इंटेंसिटी बढ़ रही है, मूसा अलैहि सलाम का थ्रेशहोल्ड भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो अब कम होता जा रहा है. वो आपको अल्फाज से पता चल रहा है. पहले कहा था कि आपने बहुत बुरी बात, नामुनासिब बात की, इमरन. अब कह रहे हैं जब कत्ल देखा इतना हॉरिफाइंग अंदाज में तो कहा कि आपने तो ये बहुत ही समथिंग कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल किया है. मुनकर कहते हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो, जिसको आप बिल्कुल जो है वो माशरे का हिस्सा ना बना सकें. तो ये दो आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं कि सेकंड ऑब्जेक्शन मूसा अलैहि सलाम का ज़्यादा इंटेंस था और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था. क्यों? इसलिए कि हज़रत खदर का सेकंड एक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, इसलिए मूसा अलैहि सलाम का ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था.